अच्छा जी, ये भरतीयन आज का शुभ दिन सारा जून आप सबके लिए मंगलमय हो। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि श्री महाराज जी की भी हमने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक चुना है और श्लोक है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भवेरितम कलम चाप हम शबन मंगल से मदा तक विनती है मुरीदा जना। श्रीमद् भागवत 10:39 प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है, वह पाप पुंज को हरने वाली है, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है, वह परम मधु तथा शुभ स्थित है जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं। वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। प्रसंग हमने किया, आज मैं आपको उससे आगे ले चलती हूँ। 1982 में 18 सितंबर को शरद नवरात्रि प्रारंभ हो गई। मंदिर में दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भंडारे में काम काज के हेतु श्री महाराज भंडारे में ही है, भक्त लोग उनकी सहायता करते हैं। 25 सितंबर को दुर्गाष्टमी के दिन महाबीर का अखंड पाठ हुआ। महामंत्र दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, अम्बे जय जगदम्बे जय जय, राम कृष्ण शारदे जय जय। 25 सितंबर को दुर्गाष्टमी के दिन ये पाठ रखा गया। रात्रि जागरण हुआ। 26 सितंबर को पाठ संपन्न करके हवन कन्या पूजन किया। श्री महाराज नव कन्याओं का पूजन करके चरणामृत पीते हैं। चरणामृत से ही उनकी आत्मा तृप्त होती है। इनका माँ के प्रति ऐसा गहरा भाव है कि माँ के चरणों का चरणामृत भी उन्हें वो कल्याण की प्रेरणा देता है। भोजन की उन्हें परवाह नहीं, भंडारे में ही सारा दिन सेवा। महाराज जनता की जनार्दन रूप में सेवा करके अति प्रसन्न होते हैं। स्वयं ही गोबर लेकर भंडारा जी की लिपाई भी करते हैं, भोजन बनाते हैं और दिन भर अमीर बच्चे बूढ़े ब्राह्मण सभी के प्रति सम दृष्टि रख स्वयं से भोजन करवाते हैं। श्री महाराज जी दिन रात को स्वयं भी करते हैं। योगा कर्म सु कौशलम अर्थात कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही योग बनता है। योग का पाया आप सब जानते हैं कि योग का अर्थ क्या है। योग है वो काम जो हमें भगवान से जोड़े, जो हमें सीधे भगवान की ओर ले जाए। तो जब हम किसी कार्य को निष्काम भाव से करते हैं तो वो योग बन जाता है और वो निष्काम सेवा ही हमें भगवान की ओर ले जाती है। श्री महाराज जी का प्रत्येक कर्म योग ही है जो उन्हें भगवान से जोड़े रखता है। श्री महाराज स्वयं तो अवतार है, संतो फिर भी वह सब कार्य भगवत भाव से भक्तों के लिए करते हैं, ताकि भक्त भी सभी कार्य कुशलता पूर्वक करें और प्रत्येक कार्य को योग बना दें और वो योग उन्हें भगवान से जोड़े रखे। कभी कभी जब मैं बीमार हो जाती है तो श्री महाराज जी कहते हैं कर्म करते हुए बीमार होना भगवत प्राप्ति में रुकावट है, इसलिए बीमार मत हो। वे कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेश गीता। दशहरे के पश्चात दीपावली का शुभ उत्सव मनाया गया। 365 दीपक प्रज्वलित किए गए, बाजार से पटाखे मंगवाए। श्री महाराज बच्चों की भांति पटाखे चलाने में आनंद ले रहे हैं, फूल झड़ी जलाकर मेरे हाथ में देते हैं। इस प्रकार श्री महाराज खेल कूद हंसी मजाक करते हुए हर कार्य श्रेष्ठतम ढंग से करते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं जो कार्य भगवत सेवा के रूप में किया जाता है वह पुनीत एवं पवित्र बन जाता है, इसलिए प्रत्येक कार्य को भगवत कार्य समझो। उनका कहना था भगवान के अलौकिक त्रिगुणा में योग माया अत्यंत दुष्ट है, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है, मम माया द्वितीया स्त्री वैश्या अथवा शुद्ध, जो कोई भी भगवान की शरण में जाते हैं उन्हें परम गति प्राप्त होती है। श्री महाराज जी अपना जीवन भगवत शरणागत था और वे प्रत्येक भक्त को शरणागत होने को कहते थे। सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम तो हम सर्व पापे भे मोक्षयामि मा सुता। श्रीमद भगवत गीता अध्याय 18। श्री महाराज जी का कहना था कि हे मानव, तुम पवित्र बनो। पवित्र हृदय मानव ही ज्ञान का अधिकारी है। आत्मज्ञान समस्त भ्रमों को हर लेता है। स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग श्री महाराज प्राय अपने साथ ही रखते थे। और मुझे याद है कि जब मैं मंदिर आई थी तो श्री महाराज जी ने ज्ञान योग पुस्तक से एक पृष्ठ निकाल कर पुस्तक मेरे हाथ में देते हुए कहा कि इसे पढ़ो, जिसमें लिखा था आत्मा न स्त्री है न पुरुष। वे प्रारंभ में ही आत्मज्ञान की शिक्षा देते रहे ताकि आत्मज्ञान होने पर मेरे संशय दूर हो जाएं, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने से हमारी आत्मा को बहुत नुकसान होता है। अर्थात अज्ञान ने ज्ञान को ढांप रखा है, इसलिए जीव भ्रमित हो रहे हो। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। श्री महाराज ज्ञान योग की प्रतिनिधि थे। ऐसा लगता था कि ज्ञान योग शरीर धारण करके हमें ज्ञान दे रहा है। इंद्रिय भोग्य पदार्थों में अनाशक्ति अहंकार का आवाज, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से दुख और दोष का दर्शन करने वाले श्री महाराज जी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान दे गए है। कई बार श्री महाराज जी कहते बाबा अब निराकार हो जाएगा, समय थोड़ा रह गया है, इसलिए रात दिन प्रयत्न करना होगा। ये सुनकर मैं रो पड़ती तो वो कहते माँ रो मत, देखो ये आत्मा अवध्य है, ये आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। पुराने वस्त्र त्याग कर हम जैसे नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही बाबा भी इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी वस्त्र को बदल डालेगा, फिर नए शरीर द्वारा अधिक कार्य करने को मिलेगा। आत्मा की अमरता का संदेश देते हुए भी कहते बाबा को चाहे कोई गोली मार दे, बाबा नहीं मरेगा। श्री महाराज कहते थे कि मानव को प्रयत्नशील होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का उद्धार क्षम करना होगा तथा अहंकार का नाश करके लोक संग्रह जनहित के लिए कार्यरत रहना चाहिए और जीवन समव्यात्मक बनाना चाहिए। अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरे धर्मावलंबियों की सेवा करनी चाहिए। ये श्री महाराज जी के बहुत से आदर्शों में एक आदर्श भी था। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद् गीता के दूसरे अध्याय के इस श्लोक में ले जाती है जहाँ आत्मा शरीर और आत्मा के विषय में बताया गया है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20, न जायते निरीयते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर न कभी जन्मता है न मरता है। शरीर का मतलब यहाँ आप लीजिए आत्मा का, देख सकते आत्मा को यह शरीर का रूप लिया है तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। गीता अध्याय 2 ही श्लोक 21 वेदा विनाशिनम मृत्युम ए यम अव्ययम कथम सकोशा पार्थ कम घात यति हंतिकम। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म सॉरी शरीर को फिर हम यहाँ आत्मा को लेंगे शरीर को नहीं। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर अथवा आत्मा को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही ये देही पुराने शरीरों को छोड़कर, यहाँ आप देही का अर्थ भी आत्मा ही लीजिए, ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। गीता अध्याय 23 कंटिन्यूसली नैनम चिरन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। शस्त्र इस शरीर को अथवा इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। गीता अध्याय 24 अच्छेद्यो अध्यायो अक्लेद्यो अशोष्या एवच नित्या सर्वगता स्थानो अचलो यम सनातना। ये शरीर अथवा आत्मा काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और ये सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि ये नित्य रहने वाला सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। गीता अध्याय 25 गीता अध्याय 2 श्लोक 25 अव्यक्तो एवं अचिंत्यो अभिकार्यो एवं मुच्यते तस्मा देवम विदित्वेनम नानो सोचित्यु मरहसि। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, देह मतलब आत्मा, ये चिंतन का विषय भी नहीं है और ये विकार कहा जाता है, अतः आत्मा में कोई विकार नहीं होता, वह शुद्ध स्फटि लिंग की तरह होता है। अतः इस देही को अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 2 श्लोक 26 तथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन से नितम तथापि तुम महाभाव नेहु सोची हसी। हे महाभाव, अगर तुम इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 2 श्लोक 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च तस्माद् परिहार अर्थे न तुम सोचु तुम हसी। कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अथवा इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निर्वाण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 2 श्लोक 28 अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्त्व का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट देखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। अगला श्लोक है आश्चर्य बत्पश्यति कृष्ण देवम आश्चर्य बत बदती तथैव चन्य आश्चर्य बत चन्य मन्या शुणोति शत बापेनम वेद न चैव कश्चित। कोई शरीर को अथवा आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है और वैसे ही कोई दूसरा मनुष्य इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता अर्थात ये आत्मा जो विज्ञे है। अगला श्लोक है, देही नित्यम अभद्योम देही सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचि तुम हसी। हे भारत अर्जुन, सबके देह में ये देही ये आत्मा नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगी कि श्री महाराज जी ने अंतिम समय में जीवित समाधि ली थी और उससे पहले 12 वर्ष पूर्व भी उन्होंने जन्म मंदिर गई थी तो बताया था कि माँ इतने वर्षों बाद बाबा मेरा काल हो जाएगा, लेकिन भगवत के पास 86 की जगह उनका याद लेना 87 में हुआ। इसी माता कहा करते थे, माता जी मम्मी जी आप मछली को गोलियां देती है इसलिए बाबा की एक वर्ष आयु और बढ़ गई। और जब उन्होंने कहा कि अब मुझे बाबा को जाना ही है तो उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया गीता का कि ये आत्मा न मरती है न इसको कोई मार सकता है, इसलिए वहाँ अब कभी दुखी ना होना न आंखों से आंसू बहाना। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ जय माता दी।